لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقال الله في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثا وربعا يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. مؤمنين، آج ہم سورہ فاطر کی شروعات کر رہے ہیں. اس میں نے جو آیت پڑھی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں. وہ مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. سورہ فاطر کے بارے میں ہے کہ وہ مکی سورت ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنی شان بیان کری ہے اور اپنے آپ کو فاطر کہا ہے. تو فاطر کے بارے میں کچھ باتیں میزان جو بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فطر کس کو بولتے ہیں؟ فطر شگاف کرنے کو کہتے ہیں، سیدھا شگاف ڈالا جائے اس کو فطر کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنا آپ کو فاطر کہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نہیں تھا اس کے پیٹ کو شگاف کرا، وہ پوری کائنات کو باہر نکالا. اس کے پیٹ کو شگاف کرا، کس کی پیٹ کو شگاف کرا؟ جو کچھ نہیں ہے، خلا ہے، خلا، اور اس میں سے پوری کائنات باہر نکالی. فرق کیا ہے؟ اللہ ایک نام اور کیا ہے؟ مبدی اور بادی، مطلب کہ کریئٹر، خالق. مبدی اور بادی اس کو کہتے ہیں جو کہ خالق بھی ہے اور جو ایجاد کرنے والا ہے. کیا ایجاد کرنے والا ہے؟ انوویشن، مطلب جو چیز کبھی بنی ہی نہیں اس کو لے کے آتا ہے، جو تھی نہیں اس کو لے کے آتا ہے. تو وہ ہوا مبدی اور بادی. فاطر کا مطلب الگ ہے. جب کوئی چیز تھی نہیں، جو مطلب کہ جو نئی چیز کو بنا، جو نئی چیز کو بنا، اس کو کہتے ہیں مبدی اور بادی. لیکن جو فاطر کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ شگاف ڈال کے کچھ نہیں، جو کچھ نہیں ہے اس میں سے نکال دے. اللہ کچھ نہیں ہے اس میں سے. کیا شان ہے اللہ کی؟ اب شان ہے اللہ کی کہ جو کچھ نہیں، کچھ نہیں تھا، لاش ہے تھی، اس میں شگاف ڈالا، وہ پوری کائنات باہر گئی. اللہ فاطر، الحمدللہ، فاطر سماوات، جس نے فاطر آسمان زمین، پھر فاطر سے فاطمہ بنایا نا، آپ کو معلوم ہے نا، وہ اس ڈیٹیل اپن نہیں جا رہے ہیں. جاعل الملائکۃ رسلا، پھر کیا کہا؟ اس نے پیغام بھیجنے والا بنایا، ملائکہ کو رسول بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، میسنجر بنا کے بھیجا، میسنجر بنا کے بھیجا. تو بڑی تفصیل ہے میزان کے اندر ملائکہ کے بارے میں. تو یہ جو ملائکہ ہیں، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے لے کے ظاہری دنیا. ایک تو ظاہری دنیا ہے، بھائی باطنی دنیا کیا ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، جو چھپی ہوئی ہے. ظاہری دنیا کے جو اللہ اور ظاہری دنیا کے بیچ میں جو میڈیم ہے، جو رابطہ ہے، وہ ملائکہ سے. مطلب دو طرح کے کام ملائکہ کرتے ہیں، عالم تکوینی اور عالم تشریح میں. دونوں میں عالم تکوینی کیا ہے؟ جتنا بھی چیزیں خلق ہوئی دنیا میں، یہ عالم تکوینی ہے نا. जो क्या है, जो के जितनी खलकत है उसमें अल्लाह और जो हम जिस चीज बनी देखते हैं उसकी बीच का जो जो मीडियम है वो फलाएगा। फिर दूसरा क्या आलम है, तशरी। कौन सा आलम है तशरी? लेजिस्लेटिव वर्ल्ड, जो शरीयत के हैं। तो अब जितनी भी शरीयतें आए अल्लाह ने अपने पैगंबरान जो यहाँ दुनिया में जो बशर थे उन पे जो भी पैगाम भेजे वो भी फरिश्ते लेके आए। तो दोनों काम मलाइका करे। तो दोनों काम मलाइका करे। फिर कहा कि जिनके दो दो तीन तीन चार चार पर है। अभी जो पर है तो पर से क्या मुराद, क्या कि फेदर के पर है क्या? नहीं, वो पर से मुराद ये है कि एक तो क्या है कि मासूम की हदीस है कि मलाइका की खिलकत नूर से होगी। तो अब नूर के कहां से ऐसे पर आ जाएंगे जैसे चिड़िया के पर होते हैं? ये एक मिसाल है कि अल्लाह ने मिसाल दी क्योंकि पर है लेकिन वो क्या है अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसके जरिए वो उड़ते हैं। अब वो है नूरानी तो उनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है। ये सब मैं ये मासूम की हदीसों से आपको बयान कर रहा हूँ, ये मिसाल सामने रखी है। उनकी फिजिकल शेप नहीं होती है तो वो उनकी जो नूरानी जो पर होते हैं उससे वो उनका जान आना जाना होता है। अब उनके दो पर भी हैं, तीन पर भी हैं, चार पर भी हैं। और उसके बाद क्या अल्लाह ने कि फिर क्या कहा अल्लाह ने कि वो अपनी खलकत में जो चीज चाहता है बढ़ा देता है ना, यजीदु फिल खल्की मायशा, अपनी खलकत में जो चाहता है बढ़ा देता है। तो उससे मुराद ये भी हो सकती है कि चार से ज्यादा कई पर भी हो सकते हैं उनके। इसलिए रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। मतलब कि जब ये जो मलाइका हैं इनका, इनको हम समझ नहीं सकते कि उनके कि उनकी जो जो वसत है कितनी बड़ी, जमीन से आसमान तक की वसत है। और ये दुनिया के सारे कामों का इंतजाम करते हैं और इनका जो रिस्क होता है, खाना तो खाते नहीं है, तो इनकी जो इनका जो रिस्क मिलता है इनको, ये अर्श से एक हवा चलती है ये उनका रिस्क होता है। अर्श से हवा चलती है उससे इनका रिस्क मिलता है, ये सब मालूम की हदीस है। फिर सरकार ने फरमाया कि 70,000 मलाइका ऐसे होते हैं जो हर साल खाने कामत पर आते हैं, फिर वहां से मौला मुत्तकियान के पास जाते हैं नजफ, फिर उसके बाद इमाम हुसैन के पास जाते हैं और वहां जाके खड़े हो जाते हैं, फिर वहां से फिर वापिस चले जाते हैं, तो फिर कभी लौट के दुनिया में नहीं आते हैं। सरकार फरमाए कि आसमान तंग हो गया है, कहा कि वहां पर कोई भी जगह नहीं है जिस पर क्या कोई मलक अपना पांव रख दे, क्योंकि वहां पहले से कोई मलक या तो रुकू कर रहा है या सजदे में है, यानी कि पूरा आसमान पैक है, हमको नहीं दिखता, पैक है जहां पर के मलक या रुकू कर रहे हैं सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक मलाइका की, उससे बड़ी कोई नहीं। मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि हर आदमी के पास एक गार्जियन एंजल होता है जो कि उसको उसकी गार्ड करता है, उसको उसका मुहाफिज है, वो कोई भी बला आती है उसको वो उससे दूर करता रहता है, यहाँ तक जब उसके वक्त आ जाती है उसके मौत का वक्त आता है तो वो हट जाता है और वो फिर उस पर वो बला आ जाती है। फिर ये जो आयत में आखिरी हिस्सा आया था यजीदु फिल खल्की मायशा, जो अपने मखलूक में जिसको चाहता है बढ़ाता, उसके बारे में कुछ हदीसें हैं। सरकार ने फरमाया कि खूबसूरती से कुरान को पढ़ना अच्छी आवाज में, उससे कुरान की खूबसूरती और बढ़ती है। फिर सरकार ने आयत फरमाई। फिर क्या कहा इमाम सादिक अलैहि सलाम से, हजारों कदर अल्लाह की दो मखलूक हैं। फिर उसके बाद मौलाना ये आयत पढ़ के सुनाई। फिर उसके बाद सरकार ने क्या कहा इस आयत के ज़िल में कि ये है खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आवाज और खूबसूरत बाल, ये भी अल्लाह की खलकत है, वो चीजें जो अल्लाह चाहता देता है बढ़ा देता है। तो ये सब नेमतें हैं, अच्छा चेहरा, अच्छी आवाज, अच्छे बाल, फिर खूबसूरती से कुरान पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने आपके सामने अर्ज किया। तो मिजा ने कहा कि जो जो फरिश्ते होते हैं ये कोई भी कायनात का कुछ भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएशन का काम हो, कुछ भी हरकत हो रही कायनात में, फरिश्ता इन्वॉल्व है। छोटा काम होगा तो होगा एक फरिश्ता इन्वॉल्व, बड़ा काम होगा तो कई फरिश्ते इन्वॉल्व हो जाएंगे। बारिश हो रही है, बादल जा रहे हैं, हर तरफ फरिश्ते मौजूद हैं, पहाड़ पर मौजूद हैं, एक्सीडेंट से बचाने के लिए मौजूद हैं, हिसाब किताब लिखने के लिए फरिश्ते मौजूद हैं, पूरा कायनात का काम, जितनी भी क्रिएशन का काम है उसमें सब में फरिश्ते मौजूद हैं। और दूसरा अपने जब हम और फिर मौत का फरिश्ता अलग है, हर चीज ये सब कायनात का काम अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते चला रहे हैं। और इनकी भी कैटेगरीज हैं, हायर लेवल का फरिश्ता अलग है, छोटे लेवल का फरिश्ता अलग है। हर फरिश्ता अपने हिसाब से मुस्तैदी से काम करता है, मुस्तैदी से मतलब फुट सोल्जर भी हैं, मैनेजर्स भी हैं। जैसे कि ये तो मतलब कि जैसे मलिकुल मौत के बारे में किसके उसके फुट सोल्जर से, तो वो अपने हिसाब से मुस्तैदी से काम करते रहते हैं। और इनके अंदर फरिश्तों के अंदर जो रिवायत है, इमाम बाबा मोहम्मद बाबर सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसराफील जिब्राइल मिकाइल को एक एक अमल से पैदा करा और उनको सुनने देखने की और तेज अकल की ताकत दी, क्विक अंडरस्टैंडिंग। तो उनमें अकल ऐसी बात नहीं रही, उनकी अकल का फील्ड अलग है और अपनी अकल का फील्ड अलग है। मैं उसकी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आदम अलैहिस्सलाम का और फरिश्तों का जो मुकाबला हुआ था उसके अंदर, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन ये हदीस मैंने आपको पढ़ के सुना दी जो मीजान में है। मा यफ़अलुल्लाह मा यफ़अलुल्लाह लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिकु लहा वमा युमसिकु फला मुरसिलु लहू मिन बादी वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह इंसान के लिए अपनी रहमत के जिन दरवाजों को खोल देता है उन्हें कोई बंद करने वाला नहीं, और जिन्हें वो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उन्हें खोलने वाला नहीं, और गालिब और साहिब हिकमत है। सारी ट्रेजर्स अल्लाह के पास, सारी जो रहमतें जो हैं अल्लाह की तरफ से हैं। दुनिया जो आपको दिख रही है अल्लाह की रहमत की नुमाइश है ये, हर चीज़ अल्लाह की रहमत है ना। अल्लाह रहमान रहीम है, सब रहमत है। और जितनी भी चीज़ें हैं, बारिश है और ये रिस्क है, सब अल्लाह की रहमत है। इल्म है, सब अल्लाह की रहमत है, है ना। और उसके ख़जाने अल्लाह के पास हैं, और फरिश्ते ये इसके बीच में एक मीडियम है जो रहमत लेके आते जाते हैं ना। तो अगर ये इनके बड़े बड़े ट्रेजर्स हैं अल्लाह के पास, तो खोलने से क्या मुराद है कि अल्लाह के ट्रेजर्स अल्लाह जिसको लिए चाहता है वो ट्रेजर खोल लेता है, जिसको चाहता है इल्म दे देता है, जिसको चाहता है हुस्न दे देता है, जिसको चाहता है ताकत दे देता है, जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, सब अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि जिसके लिए वो रहमत को दरवाजे खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता, दे दी कोई नहीं, और जिसके लिए बंद कर रहा है तो कोई खोलने वाला नहीं। और फिर उसने अपने दो नाम दिए, अजीज और हकीम, अल्लाह वो गालिब और हिकमत वाला है, वो पावरफुल है, वो जो कर दे फिर उसको रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हकीम भी है, वो जो चाहता है वो हिकमत से करता है, कि ये नहीं कि अल्लाह ने कुछ भी कर दिया, नहीं, हर चीज़ में हिकमत है। किसी को उसने इल्म दिया तो उसमें भी उसकी हिकमत है, अगर किसी को माल दिया उसमें भी हिकमत है, अल्लाह ने जिसको हिदायत दी उसके लिए हिकमत है, जिसको हिदायत ना दी उसमें भी हिकमत अल्लाह की। अल्लाह का हर काम पुर हिकमत होता है। इंसानो तुम पर जो अल्लाह की नियमात हैं उसे याद करो, अल्लाह के अलावा कौन कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है नहीं है कोई महबूद सिवाय उसके कि तुम किस तरफ बह के जा रहे हो। फिर अल्लाह सुबहान तआला की दूसरी जो आयत, जो ये तीसरी आयत है सूरह फातिर की, उसमें अल्लाह ने याद दिलाया कि याद करो इंसान और अल्लाह की नेमत को, कि कोई और खालिक नहीं है उसके सिवा, हल मिन खालिकुन गैरुल्लाह, कौन खालिक उसके अलावा जो तुम्हें आसमान से रिस्क दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ये माबूद है वो। तो फिर तुम कहाँ भेके जा रहे हो? अरे मोमिनीन, आसमान से बारिश होती है, फरिश्ते लेके आते हैं, जमीन पर पानी गिरता है, बंजर जमीन को अल्लाह ताला हयात देता है, उसमें से सब्जा निकालता है, खाना निकालता है, कौन करता अल्लाह के सिवा सब चीज़? आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे, वो सारा काम ही फरिश्ते करते रहते हैं और हम बेखबर हैं। हम अपने हमारे ऊपर इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि हम ये न तो बारिश को देखते हैं, न से हिकमत लेते हैं, न हमारे दिल के हमारा कल्पता पाक है कि हम फरिश्तों को महसूस करें जो कि हम कर रहे हैं। सभी मैंने आपसे अर्ज करा ना कि सरकार ने फरमाया कि पूरा आसमान पैक है जहाँ पर फरिश्ते न हो और अल्लाह ही के काम न कर रहे हो या उसकी इबादत न कर रहे हो, सभी कर रहा है ना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पूरी दुनिया का जो स्टोर्ड फूड है ना 2 महीने का, अगर 2 महीने बारिश नहीं हो और सब खाना नहीं उगे तो सब भूखे मर जाए, 2 महीने के का है अपना सिर्फ ठान कि अगर खाना अल्लाह पैदा ना करे तो 2 महीने में सारे अनाज खत्म हो जाए दुनिया से। इस पूरी दुनिया आज का दुनिया में इतना कुफ्र है, उसके बाद भी अल्लाह इतनी नियमतें दे रहा है और हम इतने अल्लाह पे के पे डिपेंडेंट हैं कि वो कि अगर 2 महीने बारिश रुक गई तो खाने खत्म हो जाएंगे दुनिया में, उसके बावजूद हमारी ये नाफरमानी अल्लाह के लिए। ये इस तरीके से इंसान ना शुक्रा होता, वह ई युकज्जिब का फकत कुज्जिबत रसूल मिन कबल, वो इल्लाह तुर्जेउल उमूर, और ए नबी अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को तकजीब हो चुकी है और तमाम उमूर की बाजिश अल्लाह की जानिब है। पहले भी हम ये झुटलाया गए तो सरकार को अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आप झुटला गए तो पहले भी नबी हम झुटलाए गए और सबकी बाजिश अल्लाह की जानिब है। क्योंकि इंसान ज़्यादातर इंसान चार पाए की तरह होता है, उसका काम ही होता है कि वो खा ले पी ले और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करे, उससे ज़्यादा वो देखता नहीं है। तो उसको फिर आसमानी बातें समझ में नहीं आती जब तक कि उसकी मौत नहीं आ जाए, ये उसके गुनाह इतने हो जाते हैं कि इतने पर्दे पड़ते हैं कि वो मिट्टी का इंसान जिसके अंदर अल्लाह की भेजी रूह है वो उस दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाता, वहाँ के जो पैगाम आ रहे हैं नहीं सुन पाता है, वहाँ के जो मलाइका हम का एहसास नहीं कर पाता है, अल्लाह सुब्हान तआला का एहसास नहीं कर पाता है, बस एक चौपाई तरह चढ़ता रहता है। या अय्युन नास इन वअदल्लाहि हक्कुन फला तगुर्रनकुमुल हया हयात दुनिया वला युगरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, इंसानों बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न ही वो दगाबाज यानी शैतान अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखे में मुब्तला न करे। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा क्या है कि तुम्हें मैं तुम्हारा महबूद हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा करा कि तुम्हारी इबादत करो इताअत करो, तुमको मुझे मेरी तरफ लौट के आना है, तुम्हारे लिए जजा व सजा है, ये अल्लाह का वादा है। वादा फला तो गरुण को महायात दुनिया, तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले ना शैतान धोखे में डाले, वला ये गरुण को बिल्लाह गरूर मतलब तुम्हारा जो दुश्मन है यानी शैतान है वो तुम्हें धोखे में ना डाले। क्या करता है शैतान, कैसे धोखे में डालता है दुनिया की जिंदगी, कैसे धोखे में डालती है, धोखे में से डालती कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, ऐसा शुरू होता है धोखा, बड़ा वो माफ़ करेगा, फिर जरा उसके बाद कहा कि जरा दुनिया की जिंदगी में अपना ध्यान लगाओ, दुनिया की जिंदगी में थोड़ा ध्यान लगाओ, और अगर थोड़े के थोड़ा अल्लाह के एकाम अगर पामाल भी हो रहे हैं तो ठीक है, जरा मैं दुनिया में अपनी थोड़ी सक्सेस हासिल कर लूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि देखो जो असली जो मज़ा है वो दुनिया की सक्सेस में है, जरा यहाँ पर एंजॉय करके देखो, ऐसा धोखा देता है वो। फिर कहता देखो कितना मज़ा आ रहा है कि मेरे पास अब मैं मशहूर भी हो गया हूँ, मेरे पास पैसा भी है और ये जॉय भी है। फिर वो उसमें खुश होना शुरू होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका धोखा बढ़ता जाता है, मीज़ान ने समझाया। उसके बाद उसको लगता है कि ये जो भी ये जो बातें होती हैं किताबों की और मलाइका की और कयामत की, ये सब कहानियां हैं, कौन देख के आया है। इस तरह से इंसान पूरा धोखे में उसको चले जाता है और दुनिया में रम जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत नहीं आती है। ये धोखा होता है, पनाह चाहते हैं इस धोखे से। इन शैतान लगुम अदुम फतखिदु अदुवा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बात हकीक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन समझो। वो अपने गिरोह वालों को इसलिए दावत देता है कि वो अहले जहन्नम में शामिल हो जाए। या अल्लाह, शैतान हमारा खुदा दुश्मन है, तो तुम भी उसको दुश्मन समझो। तो तुमको इसलिए बुलाता है ताकि तुम सब तुम्हारा गिरोह बने और तुम सब असहाबे सही बनो, असहाबे सही है मतलब आग वालों के आग वाले बनो, जो आग में जलेंगे। तो हमको चाहिए हमेशा ये देखते रहें कि जो हम ये सोच रहे हैं या ये हरकत कर रहे हैं इसमें किसका दखल है, ये हमारा शैतान का दखल है कि किसका दखल है। या अगर हिदायत है तो शुक्रिया अदा करें अल्लाह सुब्हान तआला का, अगर हिदायत नहीं तो उससे दुआ करें। लेकिन कुछ भी अमल हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं या कुछ वसवसे आ रहे हैं, फौरन उनको चुकना चाहिए। तो कुरान में इसकी आयत है चुकने की, सूरह एराफ में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमको चुकना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन है। फिर जैसे आपस में झगड़े करवाता है या हमारा दिमाग में नए नए फितूर पैदा करता है, हमको चाहिए कि उस वक्त देखेंगे हमारे दुश्मन हमारे साथ इस वक्त क्या कर रहा है। अल्लदीना कफू लहुम अजाबुन शदीद والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير। जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया उनके लिए सख्त अज़ाब है, और जो लोग ईमान लाए अमल सालेह बजा लाए उनके लिए मगफरत और बड़ा सवाब है। जो कुफार उनके लिए शदीद अज़ाब है। उनको देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि कुफार कितने मज़े कर रहे हैं, चाइना की प्रोग्रेस कर रहा है, ज़्यादातर कुफार है दुनिया प्रोग्रेस कर, जापान और ये और वो, कभी उस पर ध्यान न दें हम, क्योंकि सख्त अजाब है। ये 2 दिन की दुनिया है। और जैसे मोमिन के साथ इतनी मुश्किल है, यमन के देख लें आप, इराक में देख लें आप, हर जगह मोमिन परेशान है ना, अल्लाह ताला की जो रहमतें जो परेशान हैं ताकि वो दुनिया में गर्क ना हो, उनकी आजमाइश में दर्जात हैं। और जो उनको दर्जात मिलेंगे मोमिन को, उनको क्या दर्जात है, मगफरत है उनके लिए और अजरुन कबीर है, कबीर अजर है। ये कबीर अल्लाह ताला जो कायनात का खालिक है वो कह रहा है कि कबीर अजर है। तो क्या होगा, क्या होगा, अल्लाह ने इस दुनिया को तो कुछ भी नहीं कहा है, वो दुनिया के लिए कहा कबीर है वो। हमको उस पर फिक्र करना चाहिए। हम सोचे भाई रूह निकल के जाएगी तो हमेशा के लिए चले जाएगी, तो उसके लिए क्या क्या वहाँ पर मुहैया नहीं करा अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा के लिए, इस रूह के लिए, इस जो उसको को नया जिस्म मिलेगा कायमत पे, फिर उसको उसकी मेहमान नवाजी करेगा अल्लाह हमेशा के लिए, कितना बड़ा अजुन कबीर होगा सोचे आप। अफमन जुय्यिन लहु सूउ अमलिही फरआहु हसना फइन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशा फला तदहर नफ्सुक अलैहिम हसरा इन्नल्लाह अलीमुन बिमा यसनउन। क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल पुरकशिश बना दिया गया हो और वो उसे अच्छा समझे, चुनांचे अल्लाह जिसके लिए चाहता है गुमराही में रहने देता है, वो जिसके लिए चाहता है हिदायत फरमा देता है, कहीं इस पर अफसोस करके तुम्हारा दम न निकल जाए। बेशक अल्लाह जानता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुफार के लिए कहा है कि उनको अपने बुरे अमल अच्छे दिखाई देते हैं, वो जो भी कर रहे हैं उनको अच्छा दिखता है, और वो बुतों की पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आयथिस्ट है, उनको वही अच्छा दिखता है कि ये सही है। आप पूछा गुमराहों से, कहा अरे कौन देख क्या है, क्या देख क्या है, दुनिया में बस अच्छे काम कर लो, लोगों से अच्छे रह लो, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है, और सोचते यही सही है। और फिर देते मिसाल है कि वो उसको देखो, उसने इन्वेंट करा था साइंटिस्ट ने, तो उसको क्या मिला, वो कितने खिदमत करके चला गया, इस तरह का जहालाना बात करते हैं। मतलब कि वो इस बात का इनकार करते हैं कि आपको खेत पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, अल्लाह पर ईमान लाना है, किताब नहीं, वो कहते हैं वो अपनी नई नई दलाइल देते हैं, ये उनके लिए है कि जिनको अपने बुरे अमल अच्छे दिखते हैं, कि हाँ जो भी सही है, कि जो भी है सही है, और कौन देख क्या है सब ये उसमें है। जिसको कि अपने बुरे अमल अच्छे दिखा देते हैं, हमको भी मोमिन को भी सोचना चाहिए इस बारे में, हमारे कोई बुरे अमल तो हमको अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों शैतान ही हरकत बार बार करता है कि आपके बुरे अमल अच्छी करके दिखाता है आपको, तो शैतान का धोखा बड़ा गहरा होता है मोमिन। अगर आप रियाकारी कर रहे हैं, ये सब बुरे अमल है, आपको अच्छे दिखते हैं, अरे मैं तो क्या काम कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है। अब अल्लाह चुनता है, देखे आप ये अल्लाह चुनता है, जिसको चाहता गुमराह करता है। पहले तो अल्लाह ने क्या कहा, अपनी रहमत की बातें करी थी, मैं फातिर हूँ, मैंने कायनात बनाई, फिर उसका क्या फरिश्ते हैं जो कि सब चीज़ों लेके आते हैं, हा? ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है, समझ में आया। फिर उसके बाद अल्लाह की रहमतें आती, रिस्क आता। अब उसके आगे अल्लाह ने क्या कहा कि अब मैं जिसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, जिसको चाहता हूँ मैं हिदायत देता हूँ। अल्लाह जानता है कल्बों को, अल्लाह ने क्या कहा, मैं अपनी रहमत के दरवाजे खोलूं कोई बंद नहीं कर सकता। फिर क्या कहा था उसने कि वो क्या कहा था अल्लाह ने, अजीजुल हकीम, अब मैं जिसको चाहूंगा अजीजुल हकीम, जिसको चाहूंगा गुमराह कर दूंगा, जिसको चाहूंगा हिदायत दूंगा। फिर उसका सरकार से फरमाया अल्लाह ने, क्या कहा अल्लाह सरकार से, अल्लाह ने क्या फरमाया, कहीं इस पर अफसोस करके तुम्हारा दम निकल जाए कि ये क्यों गुमराह हो गया, तुम रसूल या अफसोस मत करो, दम न निकालो। रसूल को तकलीफ होती थी कि उनका दिल चाहता था कि सबके सब जन्नत चले जाए, इंसान पूरे के पूरे, हर पैगंबर की ये ख्वाहिश थी कि सब के सब फला पा जाए, अच्छे दिल के रहना। तो अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है, ये ऐसी कई बार यह आया था इस तरह से दोहरा के कहीं तुम्हारा दम ना निकल जाए कि ये लोग हिदायत क्यों नहीं पाते, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं इसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, वो मैं सोचा हिदायत देता हूँ, लेकिन अल्लाह जरूर नहीं करता, कि अल्लाह अजीज हकीम है, हकीम है, वो जानता है कौन हिदायत के लायक है और कौन कमबख्त है। इन्ना अलीम बीमा यसनाउन, अल्लाह बेशक अल्लाह जानता है कि वो कुछ कर रहे हैं, हरकत देखता अल्लाह। वल्लाहु अल्लज़ी अरसल रियाहा फतुसीरु सहाबन फसुकना हु इला बल्दिन मैयतिन फअहयना बिही अर्दिल बादी मौतिया कदालिका नुशूर। वो अल्लाह वो है जिसने हवाएं भेजी हैं जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम उस बादल को खुश और बंजर बस्ती की तरफ सैराबी के लिए लेके जाते हैं, और उसके जरिए हम जमीन को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी अता करते हैं, मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा। अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह ताला बता रहा है किस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला हवाओं को भेजता है जो कि बादलों को लेके जाती हैं, फिर उसके बाद मरी बस्ती को अल्लाह जिंदा करता है। हम रोज देखते हैं वो सारा काम कौन कर रहा है, फरिश्ते लगे हैं, कितने फरिश्ते लगे हमको मालूम ही नहीं। अब वहाँ का बादल गल्फ का बादल ला के हम पानी बरसाएगा, वो कौन सी रही बरसाना, कितना ऑर्गेनाइज होता है बरसाना, आप देखें हर जगह यूनिफॉर्म सांभरी जो बारिश होती है वो कैलकुलेटेड होती है, हर खत्म बारिश होती है, पूरा हिसाब अल्लाह कहता था। तो वो सब काम ये अल्लाह करता है, मरी जिंदगी मरी हुई जमीन को जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा इसी तरह तुम भी जिंदा किए जाओगे। मासूम की हदीस है कि 40 दिन बारिश होगी कयामत के दिन, जब लोग उठेंगे 40 दिन बारिश होगी, फिर लोगों का गोश्त उसमें बदन ग्रो करेगा। अल्लाह हर काम हिकमत से होता है, अल्लाह उस 40 दिन बारिश में उसके बाद धीरे धीरे अल्लाह सुब्हान तआला लोगों की नए बदन बनाएगा। पनाह चाहते हैं उस दिन से हम अल्लाह की, जिस दिन हम उठाए जाए। मन काना युरीदु इज्जत फलिल्लाह इज्जतु जमीआ, इलाही इलाही यसअदु यसअदु कलिमतु तय्यिबु व अमलु सालिहु यरफ़ाउ वल्लदीना यमकुरून सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मकरुहु उलाइका व यबूर। I'll read a set of one more time. Man kana yuridu azzata falillah azzata jami'a ilahi yas'adu kalimata tayyibu wa amalu salihu yarfa'u wal ladina yamkuruna sayyati lahu azabun shadid wa makruhu ulaika huwa yabur. Jo shakhs izzat ka talabgar hai to tamam tar izzat Allah ke liye hai, aur uske yahan jo cheez upar chadti hai wo sirf pakiza qaul hai, पर अमल सालेह उसे ऊपर चढ़ाता है। रहे वो लोग जो बुरी चालों में लगे रहते हैं, उनके लिए सख्त अज़ाब है और उनका मकर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत आयत है, आज की आखिरी आयत है, इसमें अल्लाह कहता है जो चाहता है उसको इज्जत मिले तो सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, और पाकीज़ा कलमात ऊपर चढ़ाते हैं और अमल सालेह थे उसको और बुलंद करता है, और जो लोग मकर करते हैं उनके लिए शदीद अज़ाब है और उनका मकर नेस्त नाबूद हो जाएगा। ईसा ने बड़ा खूबसूरत समझाया साहब को इज्जत क्या है, मतलब कि पहले तो क्या है, मीज़ा ने बताया क्या होती है इज्जत। इज्जत होती है ताकत, अल्लाह की ताकत। इज्जत मुराद है अल्लाह की ताकत और अल्लाह की शान, ग्लोरी, माइट एंड ग्लोरी। उससे अल्लाह का नाम बना अजीज, क्योंकि वो इज माइटी, ताकतवर और ग्लोरियस, मतलब इज्जत अल्लाह की ताकत और शान। तो अगर किसी को चाहिए कि वो ताकतवर बने और साहिब इज्जत बने तो सारी की सारी वो अल्लाह के पास है। एक कुरान में दूसरी आयत आई ना कि किसकी पता ही ना, इज्जत अल्लाह की और रसूल की और मोमिनीन की, इनकी इज्जत है जो अल्लाह की तरफ से आती है। चाहिए इज्जत अल्लाह देता है, कुरान में आयत है जिसको चाहे अल्लाह दे इज्जत, जिसको चाहे अल्लाह जलील कर दे। वो भी आयत है, लेकिन उसके बारे में हम बहस नहीं कर रहे इस वक्त। लेकिन इस आयत की से मुराद ये है कि सारे इज्जत अल्लाह के हाथ में। अच्छे कलमात उसको ऊपर लेके जाते हैं। क्या मतलब, मीज़ान समझाया अच्छे कलमात क्या होते हैं, अच्छी बात करना। अच्छी बात से क्या मुराद है, अच्छा अकीदा। अच्छा अकीदा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली मुल्ला, ये अच्छा अकीदा है। अच्छी बात मतलब अच्छा अकीदा, अच्छा अकीदा आपको ऊपर लेके जाता है। ऊपर से क्या मुराद है, ऊपर से मुराद है अल्लाह सुब्हान तआला अर्श। ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हैं तो आप अल्लाह से आप कुर्ब हासिल करते हैं, तो आप अपने आप ऊपर की तरफ रुजू करते हैं, आप रुजू करते हैं अल्लाह की जात की तरफ, क्योंकि आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने कहा अली मुल्ला, आपके कलमात आपका ईमान है और ईमान आपको ऊपर लेके जाता है, अल्लाह से कुर्ब देता, तो आपकी इज्जत होती कि आप ऊपर जा रहे हैं। फिर क्या आया है, वह अमल साल है या फाओ, फिर आप चूंकि अच्छा ईमान रखते हैं तो उसके असरात आपकी जिंदगी में आते हैं और आप अच्छे अमल करते हैं। अब आप जब अच्छे अमल करते हैं तो आपको और बुलंदी देते हैं। अब आपने अच्छा अमल किया, आपको बुलंदी मिली, तो फिर उसका इफेक्ट यह होता है कि फिर आपका ईमान और बढ़ जाता है, तो आप और बुलंद होते हैं। और ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह चाहता है जिसको बुलंद करता है, अल्लाह चाहता है जिसको आगे बढ़ाता है। और जो जो लोग मकर करते हैं उनके लिए शदीद अज़ाब है और उनका मकर बर्बाद हो जाएगा। ये अय्याम अज़ा चल रहे मोमिनीन। इस आयत की बेहतरीन मिसाल हुसैन अलैहिस्सलाम है कि उन्होंने जो उनका जो ईमान था, उनके बहुत तर असहाब का जो ईमान था, वो ईमान के असरात 10 मुहर्रम को दिखे जब उन्होंने उस ईमान को अमल में बदला। तो मैंने वो उस ईमान को अमल में बदलने के बाद उन्होंने जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी और जो उनको बुलंद करा, वह आज दुनिया देख रही है। हम आपके लिए दुनिया देख रही है, आज चहलम करीब है, वो मिलियंस में लोग जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने इज्जत दी है। मिलियन से जा रहे हैं जिनकी जा रहा है क्योंकि अल्लाह ने इज्जत दी है। और ये इज्जत हुसैनी वो होगा जो कि मोमिन होगा ताकि अल्लाह उसको भी इज्जत दे, जिससे ना कुरान के तीन की इज्जत अल्लाह रसूल मोमिन की। हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे हमारे हमारा कल्ब इतना पाक होंगे, हमारा ईमान इतना बुलंद होगा, हम नेक अमल करें, अल्लाह की राह में जद्दोजहद करें, जिहाद अकबर करें। तो जिहाद अकबर मतलब अपने आप को कि नफ्स को से जिहाद करें और हम पाकीज़ा हों और इमाम के रास्ते पे चलें। मकरूह सयादी का मिसाल मकरूह सयादी यजीद ने करा था ना, मकर करा था ना, कहते हम ख़त्म कर देंगे हुसैन को, नाम लेवा कोई नहीं हुआ, एहले बैत का मकर था वो। तो अल्लाह ने क्या करा, मकरूह सैयद लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है। वो मकरूह उला का हुआ यबूर, मकरू उला का यबूर, सरकार के साथ ही मकर हुआ था, वो यबूर हुआ, वो बर्बाद करा था उन्होंने, मौला मुत्तकियान के साथ करा था। 600 साल मौला मुत्तकियान के ऊपर मिंबर से लानत हुई है, मकर करा था बनी अब्बास ने, वो खत्म हुआ। इमाम हुसैन के साथ मकर करा, अहले बैत के साथ मकर करते हैं, अल्लाह ने खत्म कर दूंगा मैं सारे मकर। अब जो तरफ नाम दुनिया में हुसैन का है, आज इज्जत है तो शियों की। आज आप देखिए दुनिया के अंदर जो जो अल्लाह ने इज्जत दी रहबर को या आदल सिस्तानी को, दुनिया उस इज्जत को देख रही है। ये तो मोमिनी इज्जत की शुरुआत है, अभी तो इमाम जमा आने वाले हैं। और ये अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेगा और हमको इसमें शामिल होना है। अल्लाह अल्लाह तआला।